SBS हिंदी।
दोस्तों, भारत में हम मज़ेदार कुरकुरी नान खटाई और खारी बिस्किट कितने मज़े से खाते थे चाय के साथ। तो क्या आप जानते हैं कि ये खारी बिस्किट, ये नान खटाई शुरू कहाँ से हुई? भाई, इसका बड़ा लंबा इतिहास है, एक हिस्ट्री है। तो आइए, मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ सूरत के डोटीवाला बेकरी के साइरस डोटीवाला के साथ। हेलो साइरस, एंड वेलकम टू द हिंदी शो।
हेलो कुमुद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो।
प्लेजर। नाउ हमें बताइए कि ये डोटीवाला बेकरी, बताते हैं, बहुत पुरानी है। कितनी पुरानी है और इसकी हिस्ट्री क्या है?
हमारी जो ये बेकरी है, हम लोग, हमारा फैमिली उसको 6 generations, 6 पीढ़ियों से उसको चला रही है। उसका एज सच कोई इंसेप्शन डेट नहीं है, लेकिन 1861 उसको इंसेप्शन ईयर माना जाता है। और उसके बाद जो 6 पीढ़ियां हुई, उसमें हम लोग ने इस बेकरी को चलाया है और हम लोग उसमें काफी प्रोग्रेस भी किया है
जी।
तो और हमारी जो ट्रेडिशनल आइटम्स है, हमारा जो गुजराती ईटिंग पब्लिक है उसको पसंद करते हैं। हमारी जो है ये ब्रेकफास्ट के लिए आइटम्स यूज होती है।
तो वो सब आपने अभी बनाना शुरू किया है, लेकिन बताते हैं कि ये फैक्ट्री जो है या बेकरी आपकी है, किसी डच पर्सन ने शुरू की थी, इसके बारे में बताइए।
अब इसका इतिहास इस तरह से है कि ये ब्रेड हिंदुस्तानियों का खाना नहीं था।
ठीक।
जब डच इंडिया में आए, तब उनके जो लोग यहाँ पे बिजनेस करने को आए, उनके लिए ब्रेड बनानी पड़ी थी।
ठीक।
तो बेकरी सेटअप हुई। तब जाके लोकल पॉपुलेशन को मालूम पड़ा कि ब्रेड क्या चीज है।
अच्छा।
उन्होंने जब ब्रेड खाया, तब उनको लगा कि ये लाइट हेल्थी फूड है, तो उसको खाया जाए। तब जाके इंडियन पॉपुलेशन ने उसको डे टू डे कंजम्पशन के लिए उसको ब्रेड को सिलेक्ट किया।
ठीक।
तो वो जब कॉलोनीज जब इंडिया छोड़ के चली गई, जो डच लोग जो यहाँ पे बिजनेस के लिए सेटल हुए थे, जब सूरत छोड़ के गए, तब उनकी जो बेकरीज और जो ओवंस थी, वो हमारे फोर फादर्स को सौंप के गए थे।
अच्छा।
और तब से लेके आज तक हम लोग उसको चला रहे हैं।
अच्छा। तो आपके जो फोर फादर्स थे पारसी जेंटलमैन, उन लोग उस डच बेकरी में काम करते थे?
यस, उनके साथ काम करते थे। और जब उनके जाने के बाद उनको ये ओवन हैंड ओवर की थी।
अच्छा।
तो उसके बाद उन्होंने ये चलाया, लेकिन फिर भी जब डाले गए, तब कंजम्पशन बहुत कम हो गया। और जब कंजम्पशन कम हुआ, तो जो ब्रेड बनते थे वो टाइम पे, वो सूखने लगे, वो बिके नहीं। लेकिन उनको फंगस नहीं लगता था वो टाइम पे, क्योंकि वो टॉडी से बनते थे। जो टॉडी जो सैप पाम की बोलते हैं, तो वो टॉडी से बनते थे। और वो बीइंग अ नेचुरल फर्मेंटिंग एजेंट, उसको क्या है कि कभी भी फंगस नहीं लगता था। वो ड्राई हो जाते थे, लाइक दे यूज्ड टू बिकम लाइक अ बिस्किट बन जाते थे ड्राई हो।
अच्छा, अच्छा।
तो उसको भी खाया जा सकता था, क्योंकि वो बिगड़ते नहीं थे। तो वो हल्का फुल्का जो बिस्किट बनता था, वो उस टाइम के डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे सिक पेशेंट्स को फॉर इजी डाइजेस्टन।
अच्छा, ठीक।
हाँ, और जब डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करना शुरू किया, तब जाके इसको मोमेंटम मिला। तब जाके ये प्रोडक्ट सब लोग एक्सेप्ट करने लगे। और वो बिस्किट जो जिसको अभी सादा बिस्किट या ईरानी बिस्किट बोलते हैं, वो आज भी बनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें क्यूमिन, मतलब जीरा का फ्लेवर ऐड किया गया है।
अच्छा।
और उसको चाय के साथ बड़े मजे से यहाँ पे लोग खाते हैं अभी भी।
वाह भाई, क्या बात है। अच्छा, नान खटाई की शुरुआत कैसे हुई?
गुजरात में एक मिठाई थी जिसका नाम था दल।
दल,
दल, डी ए एल, दल। अब उस दल को इन्होंने ओवन्स में छोटे राउंड्स बना के, उसके ऊपर काजू ड्राई फ्रूट्स लगा के, उसको ओवन्स में उसको सेक दिया, मतलब उसको बेक किया।
ठीक।
तो उसका एक एक बिस्किट या कुकी का फॉर्म आ गया। फिर उसके अंदर नटमेग, मतलब जायफल, और कार्डमम, मतलब इलायची डाल के उसको फ्लेवर किया।
हाँ।
और उस जमाने में प्योर घी में से सब चीज बनता था, क्योंकि वनस्पति या मार्गरीन वो टाइम पे इन्वेंटेड नहीं था. तो गांव से लोग शुद्ध घी लेके वो लेदर बैग्स में आते थे हमको सप्लाई करने के लिए.
अच्छा.
कोई भी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम टू प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स वो टाइम पे नहीं था. तो ये प्योर घी में से बना हुआ जो ये कुकी या जो ये बिस्किट जिसको बोलते हैं, उसको बिस्किट की कैटेगरी नहीं, वो नानखटे ही कहलाता है.
अच्छा अच्छा ठीक.
और ये दिवाली के टाइम पे बहुत पॉपुलर है यहाँ पे इंडिया में, और आई एम श्योर के उधर भी जो इंडियन पॉपुलेशन होगा उनको भी ये नानखटे वहाँ पे मिलती होगी तो ज्यादा पसंद आती होगी.
जी जरूर. आप लोग एक्सपोर्ट भी करते हो शायद नान खटाई?
यस, इन स्मॉल क्वांटिटीज वी हैव एक्सपोर्टेड. हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं सिलेक्टिवली.
खारी बिस्किट का बताओ.
खारी ऐसा यहाँ का इन्वेंशन नहीं है, इट्स अ फ्रेंच इन्वेंशन. पफ पेस्ट्री के पर से ये खारी बना हुआ है. टेक्निक ऑफ लेमिनेशन, जो खारी जिस तरह से बनती है वो लेमिनेशन से बनती है. मतलब रोलिंग फोल्डिंग करके फ्लास्क के बीच में फैट का लेमिनेशन किया जाता है.
अच्छा.
और फिर उसको बेक करके क्रिस्पी बना के उसको चाय में डुबो के खाया जाता है.
ओहो.
और ये यहाँ का बहुत पॉपुलर बिस्किट बन जाता है.
ठीक है भाई, आपकी बातों से
सब लोग को उसको चाय के साथ में खारी कंपल्सरी है. हर एक चाय की लारी पर भी आपको खारी देखने को मिल जाएगी.
हमारे तो मुंह में पानी आ गया ये बातें सुनकर. अच्छा, आपने कहा कि ओवन्स भी आपको जो डच बेकर्स थे उन लोग देकर गए, तो वो ओवन्स आज जो आप ओवन्स यूज करते हो उससे तो फर्क होंगे ना शायद?
हाँ, उसमें बहुत फर्क है. जो हमारा जो पुराना ओवन्स था जो हमने काफी साल तक यूज किया, टिल से 1994 तक, 1994 तक हमने यूज किया. एंड वो जो ओवन्स थे वो लकड़ी पे जलते थे. जो फायरवुड आता है बावल का
जी,
वो लकड़ी से जला के वो ओवन्स चलते थे. उसके बाद में 95 ऑनवर्ड्स नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया वो ही ओवन्स में एज फ्यूल.
ठीक. अच्छा.
एंड नाउ वी यूज रोटरी रैक ओवन जिसको बोलते हैं, वो जो अभी की टेक्नोलॉजी की ओवन है. तो वो हम लोग अभी यूज करते हैं. वो भी नेचुरल गैस पर ही चलती है.
अच्छा, तो वक्त के साथ आप लोगों ने भी अपनी टेक्निक में काफी बदलाव लाया है. तो खारी बिस्किट और नान खटाई तो हम अब जानते ही हैं, इसके अलावा खासियत क्या है?
हमारा जो प्रोडक्शन है वो बिस्किट्स, ऑल टाइप्स, मेनी टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, हम लोग पूरा बेकरी का जो रेंज है वो सब मैन्युफैक्चर करते हैं. लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल आइटम हमारा माखनिया है, जो चाय के साथ, वो एक राउंड सॉल्टी बिस्किट है जिसको चाय में डुबो के, चाय में रहने देना चाहिए उसको अबाउट 30-40 सेकंड्स तक, और फिर उसको खाना चाहिए. तो वो उसका स्वाद जो है वो बहुत बढ़िया आता है. उसका फ्लेवर वो कैरवे सीड से आता है. हाँ, इसको उसको कैरवे सीड्स से उसको फ्लेवर किया जाता है, और वो सेवरी बिस्किट है, और वो यहाँ का बहुत पॉपुलर बिस्किट है. जो हमारा हाईएस्ट सेलिंग आइटम भी वही है, और हम लोग उस हमारा जो है स्पेशलाइजेशन भी उसी में है.
क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके. लेकिन अब आपको छोड़ेंगे नहीं, छोटी सी रेसिपी ही दे दीजिए नान खटाई की जो हम घर पर बना सकें.
श्योरली दे देता हूँ. अपने शुद्ध घी लेना होगा 500 ग्राम, 500 ग्राम पिसी हुई चीनी मतलब शक्कर, 1 किलो मैदा रिफाइंड फ्लावर, 5 ग्राम जायफल का पाउडर
जी,
3 ग्राम इलायची के दाने, 5 ग्राम यानी 1 चम्मच जितना कैरमल कलर.
अच्छा,
ये इंग्रेडिएंट्स है. अभी उसकी जो मेथड में है वो आपको बता दूं, वो जो शुद्ध घी को शक्कर के साथ फैट के उसको हल्का किया जाता है, एकदम हल्का, पूरा व्हाइट कलर उसका हो जाना चाहिए
जी.
उसके बाद में उसमें नटमेग पाउडर, कार्डमम पाउडर और कैरमल डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स किया जाता है.
ठीक.
ये लाइट फ्लफी जो मिक्सचर हुआ उसके अंदर धीरे धीरे करके मैदा को अंदर फोल्ड इन किया जाता है, और एक सॉफ्ट डो जैसी कंसिस्टेंसी का एक प्रेपरेशन तैयार होता है. उस प्रेपरेशन को समझ लो 25 ग्राम्स के राउंड बॉल्स बनाने के हैं।
ठीक।
उस राउंड बॉल्स के ऊपर थोड़ा आमंड या फिर कैजुनट बिट्स लगा के दो पाम के बीच में अपने हाथ की जो हथेली है उसके बीच में दबा के फ्लैट किया जाता है वो बॉल को। उसको बेकिंग ट्रे पे रख दीजिए और बेकिंग ट्रे पे रखने के बाद उसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 25 मिनट तक उसको बेक कीजिए।
अच्छा अच्छा वाह,
आपकी नान खटाई बिल्कुल रेडी हो जाएगी।
भाई बहुत ही अच्छी तरकीब आपने बताई है, लोग इसको सुनकर बहुत खुश होंगे।
इट इज अ सिंपल रेसिपी एंड यू कैन डू इट इन द हाउस एज वेल।
फैंटास्टिक, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और दोतीवाला बेकरी आगे ही बढ़ती रहे, यही चाहते हैं हम।
थैंक यू वेरी मच कुमुद जी।
थैंक यू।
आपके विचार हमें बताएं। SBS हिंदी को फेसबुक पर लाइक करें और @SBS हिंदी को ट्विटर पर फॉलो करें।